नहीं कुछ चाहे अब। जब से तुमको जाना है
दिल और नहीं कुछ चाहे अब, जब से तुमको जाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। तेरी बात मुझे हर भाती है, श्रीमत परवारी जाऊं मैं।
सुन करके तुमको ओ बाबा, अंदर का सुख पाऊं मैं।
तेरी बात मुझे हर भाती है, श्रीमत परवारी जाऊं मैं।
सुन करके तुमको ओ बाबा, अंदर का सुख पाऊं मैं।
मेरा दिल तो बाबा तेरी मुरली का दीवाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है।
तेरी शिक्षाएं बरती है अनोखा बल मुझ में।
अब सारे रिश्ते हो बाबा, मुझे आते नजर हर पल तुझ में।
फिर माथे तेरी शिक्षाएं बरती है अनोखा बल मुझ में।
अब सारे रिश्ते हो बाबा, मुझे आते नजर हर पल तुझ में।
अब तेरे लिए ओ बाबा ना कोई बहाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा,
बस तू ही मेरा खजाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है।
खुद पर ओ बाबा तू बना जो मेरा मित्र।
तेरी यादें मन को कर देती मेरे बाबा परम पवित्र।
मुझे नाज है खुद पर ओ बाबा तू बना जो मेरा मित्र।
तब जान लियो ही तुझको मैंने जो जाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है।
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 ओम शांति। आदरणीय रुपेश भाई का हम सभी हाथ हिलाकर भट्टी के इस सत्र में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय रुपेश भाई जी को ज्ञान मिला 1992 में और 94 से ही आप माउंट आबू ज्ञान सरोवर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। आप स्पार्क के कोर ग्रुप मेंबर हैं और स्पार्क के मेंबर के नाते से ज्ञान की बातों पर कोई ना कोई रिसर्च आप करते रहते हैं। ब्राह्मण परिवार में हम सभी का पुरुषार्थ और अच्छा हो, उसमें आपका बहुत अहम योगदान होता है। और आप सभी को मालूम होगा, आदरणीय भाई साहब सूरज भाई साहब के साथ समाधान कार्यक्रम में एंकर के रूप में हमारे आदरणीय रूपेश भाई जी ने ही अपनी सेवाएं दी हैं। एक मुलाकात, छूलो आसमान, रूरियान जैसे कई सारे पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग में प्रसारित होने वाले चैनल्स के प्रोग्राम को आपने एज एन एंकर अपनी सेवाएं दी हैं। बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जैसे सर्वशक्तिमान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, ऐसे मैं रूपेश भाई जी को शुरू दिन से मेरा यही इमेज है, ये मास्टर सूर्य भाई जी हैं। आदरणीय भाई साहब के मार्गदर्शन में रूपेश भाई जी ने भी अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया है कि वो हमारे पुरुषार्थ को ऊंचा उठाने की क्षमता रखते हैं। रूपेश भाई जी,
ओम शांति। हम सब जो भी हैं, किसने बनाया है, तो हम कहीं भी पहुंच जाएं, जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमेशा बाबा सामने होते हैं कि बनाने वाला, गढ़ने वाला, देने वाला हम सबको वही है ना। और गीत भी कितना प्यारा सा था, शुक्रिया, आपने बहुत प्यारा गीत बजाया। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, अब तू ही मेरा खजाना है, अब तू ही मेरा खजाना है, और किसी खजाने की चाह नहीं। दुनिया में भी कहते हैं जिसे भगवान मिल जाए उसे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान के पाने के बाद ना कुछ देखने की इच्छा, ना कुछ सुनने की इच्छा और ना कुछ पाने की इच्छा शेष रह जाती है। जिसने उसे पा लिया, उस खजाने को पा लिया, वो जैसे मग्न हो जाता है, तृप्त हो जाता है, उसकी आंखें फिर कहीं डूबती नहीं। तो ऐसी स्थिति हो गई है ना, भट्टी में ऐसा अनुभव किया ना। और यही स्थिति हमें लेकर जाना है कि बस अब वही एक, तो अंदर से आत्मा तृप्त हो गई है, उस एक खजाने को पाकर और किसी को पाने की इच्छा या कामना शेष तो नहीं है ना। अंदर से ये पूछना है अपने, कहते तो हम हैं कि एक बाबा तू ही मेरा संसार है, तू ही मेरा सर्व संबंधी है, लेकिन क्या उस सर्व संबंधी के अलावा और किसी संबंधी, और किसी व्यक्ति वस्तु की आवश्यकता महसूस होती है? और यदि ये है तो अब तक उस खजाने को हमने ठीक से पाया नहीं है, पहचाना नहीं है। संसार में तो लोग स्थूल धन को खजाना कहते हैं, लेकिन बाबा ने हमें वो सूक्ष्म खजाने दिए हैं जो अविनाशी हैं। ब्रह्मा बाबा कितने धनाढ्य थे, संपन्न थे, लेकिन जैसे ही शिव बाबा मिले, वैसे ही सच्चा खजाना क्या है वो उन्होंने अनुभव कर लिया। और इसीलिए लिखा पत्र में, पा रहा हूं, पा रहा हूं, पा लिया, पा लिया। और जब पा लिया तो उन्हें अपने जो हीरे जवाहरात थे वो भी कंकड़ पत्थर लगने लगे। तो जो सचमुच परमात्मा को, शिव बाबा को खजाने के रूप में अनुभव कर लेता है, उसके दिए हुए खजानों को, कई बार बाबा कहते हैं कि बाबा शब्द चाबी है, डायमंड की है सर्व खजानों की, इसीलिए इस चाबी को खो मत देना है, ये चाबी साथ रहेगी तो उसके दिए हुए सर्व खजाने तुम प्राप्त कर सकते हो। तो संसार में भी तो बाबा तो हमारे लिए हैं ही, डायमंड की हैं, सर्व खजाने हैं, लेकिन उन्होंने हमें जो दिया, आज उन खजानों की थोड़ी चर्चा। क्योंकि कई बार हमारे घर में कुछ रहता है और हमें पता नहीं होता कि वो चीज घर में है, और जब सफाई होती है दिवाली के दिनों में तब लगता है अरे ये तो यहां रखी हुई है, इसको मैं कब से ढूंढ रहा था, कब से इसकी तलाश कर रहा था और ये मुझे मिला ही नहीं है। तो चीजें हमारे पास होती हैं लेकिन वो कहां है ये पता हो, उन्हें बार बार हम देखते रहें, यूज करते रहें, तो वो चीजें हमारे काम आती हैं, बढ़ती भी हैं। तो ऐसा ना हो कि चीजें हमारे पास हैं और वो चीजें हमारी ज्ञान में ही नहीं है, ध्यान में नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं कि जो बड़े साहूकार होते हैं, सेठ होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी तिजोरी को बार बार खोल के देखते रहते हैं कि कितना खजाना है, कितना माल है। क्यों देखते हैं, क्योंकि जितना देखते हैं तो उतनी उन्हें खुशी होती है, नशा चढ़ता है कि इतना खजाना मेरे पास है, मैं इतना संपन्न हूं, इतना धनाढ्य हूं। तो बाबा ने भी हमें क्या दिया है, उसे बार बार देखते रहें, बार बार देखते रहें। क्या क्या दिया बाबा ने हमें, संसार में भी 8 सिद्धि और 9 निधियों का जिक्र है। तो संसार में तो 8 सिद्धि कहते हैं लेकिन बाबा ने हमें 12 सिद्धियों की बातें कही है। आप 26/6/1974 की मुरली पढ़िएगा, उसमें बाबा ने 12 सिद्धियों की चर्चा की है कि कौन सी 12 सिद्धियां तुम्हें सर्वशक्तिवान के मिलने के बाद प्राप्त हो जाती है। लोग एक एक सिद्धि के लिए कितनी साधना करते हैं और यहां बाबा ने हमें 12 सिद्धि, वहां 8 सिद्धि लेकिन यहां बाबा ने कहा तुम्हें 12 सिद्धियां देता हूं। लेकिन आज सिद्धि की चर्चा नहीं, आज तो खजानों की चर्चा है। तो 9 निधि जिनका वर्णन है उनकी चर्चा आज हम करेंगे और देखेंगे कि ये निधि केवल चर्चा नहीं, खजाने यदि हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है। एक तो खजानों की चोरी ना हो रही हो, राइट? कई बार खजाने चोरी भी हो जाते हैं। तो मेरे खजाने माया रूपी चोरनी चुरा ना रही हो, इसकी चेकिंग हो। दूसरी बात, कहीं मैं अपने खजाने को वेस्ट ना कर रहा हूं। कई लोग अपने खजानों को वेस्ट करते रहते हैं, उसके मूल्य को नहीं समझते कि वो कितना मूल्य है, और जब पूरा खजाना खाली हो जाता है तब लगता है कि अरे मैं कहां से कहां आ गया, कहां अर्श से फर्श पर आ गया। और तीसरा हमें क्या करना है, जो भाई साहब ने कहा, खजानों को यूज करना है, उसे बढ़ाना है, उसका दान करना है। भगवान ने हमें ये खजाने दिए हैं यूज करने के लिए, ये प्रसाद है हमारे लिए, और प्रसाद कभी भी अकेले नहीं खाया जाता, प्रसाद बांट के खाया जाता है। तो पहली निधि, पहला खजाना जो बाबा से हमें मिला वो है ज्ञान का खजाना, ज्ञान का खजाना। संसार ढूंढ रही है कि सत्य क्या है, ये सृष्टि किसने रचा, सृष्टि बनी कैसे, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। शास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में इतना ज्ञान भरा हुआ है, फिर भी भटकाव इस बात का प्रतीक है कि सत्य ज्ञान कुछ और है। क्योंकि जब सत्य मिल जाता है, सत्य ज्ञान मिल जाता है, तो भटकना बंद हो जाता है। आप में से अधिकांश लोगों का यह अनुभव होगा कि हम अलग अलग जगहों पर जाकर के सत्य की तलाश कर रहे थे, राइट? कि सत्य कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, और जैसे ही बाबा के पास आए हमें ज्ञान मिला और आत्मा तृप्त हो गई ना, अंदर से भटकाव खत्म हो गया, जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया। ये आवाज आई ना अंदर से, इसीलिए और जगह जाना बंद हो गया, जिसकी तलाश थी वो मिल गया। तो सत्य ज्ञान भटकना बंद करा देता है। तो कितना बड़ा ये खजाना है। ज्ञान सागर परमात्मा ने थालियां भर भर के ये ज्ञान के रत्न हमें प्रदान किए हैं। इन रत्नों से अब हमें खेलना है। जो राजकुमार राजकुमारी होते हैं वो मिट्टी में नहीं खेलते, पत्थरों से नहीं खेलते, किसके साथ खेलते हैं? रत्नों से खेलते हैं, है ना, हीरे जवाहरातों से खेलते हैं। तो यहां कौन कौन राजकुमार राजकुमारी बैठे हुए हैं, जरा हाथ उठाएं। सभी हैं ना। अच्छा, आपने सबकी जिम्मेवारी ले ली कि हाँ आपको इतने इतना पक्का है कि सभी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा गहरा हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग अनुभूति रहे भविष्य में जो राजकुमार राजकुमारी बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं वर्तमान के तुम कौन हो? साहबजादे और साहबजादियां हो, भगवान के बच्चे हो, ज्ञान सागर के बच्चे हो। और ज्ञान सागर ने तुम्हें इतनी भर भर के जो थालियां दी हैं, थालियां तो कहने में आती हैं, अथाह है ज्ञान। क्या हम उन ज्ञान रत्नों से खेलते रहते हैं या पुरानी बातों से खेलते रहते हैं? खेलते किससे हैं? हमारे मन में क्या चलता रहता है, हमारे मुख में क्या रहता है? ज्ञान की बातें रहती हैं। जैसे शिव जी पे दिखाते हैं, बूंद बूंद पानी टपक रहा है, टपक रहा है। क्या ऐसे ही ज्ञान मेरे अंदर टपकता रहता है? क्या ऐसे ही ज्ञान का सिमरण चलता रहता है? तो ज्ञान, इस ज्ञान को हमें यूज करना है। ज्ञान केवल सुनना नहीं, लेकिन ज्ञान सुनकर दूसरों को सुनाना भी है। जो हमने सुना वो सुनाए, तो सुनी हुई बात याद भी रहती है। और ज्ञान धन जितना दान करते हैं उतना ज्ञान धन में वृद्धि भी होती जाती है। तो जितना यूज करेंगे उतना बढ़ेगा। तो कंजूस ना बने ज्ञान धन दान करने में। तो सुनना भी है और सुनाना भी है, और दूसरा समझना भी है। पहला स्टेप होता है ज्ञान को सुनना और दूसरों को सुनाना, लेकिन दूसरा स्टेप है ज्ञान को समझना। हम कई बार कहते हैं ना कि अच्छा आज ये बात मेरी समझ में आए, अब तक तो मैं सुनता था लेकिन आज ये बात मेरी समझ में आए। समझ में कब आती है कोई चीज? कब आती है? जब उस पर हम विचार सागर मंथन करते हैं। इसीलिए ज्ञान केवल सुनना नहीं है लेकिन उस पर विचार सागर मंथन करना है, तब वो ज्ञान आपकी समझ में आएगा कि उसकी महत्ता क्या है और कैसे उसे दूसरों तक पहुंचाया जाए। इसलिए विचार सागर मंथन जरूर करें। हम सुनते मण भर हैं और चिंतन कण भर करते हैं। सुने भले कण भर लेकिन चिंतन करें मण भर, क्योंकि जब मनन करेंगे तभी मगन होंगे। जब मनन करेंगे तभी ये ज्ञान डाइजेस्ट होगा, वो ज्ञान आपका बनेगा, वो आपको शक्ति प्रदान करेगा और तभी वो सामर्थ्य अंदर आएगा कि आप दूसरों को भी ये ज्ञान बहुत ही अथॉरिटी के साथ सुना सकेंगे। इसलिए ज्ञान मनन जरूर करना है। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, गाय घास खाती है और एकांत में जाकर बैठकर जुगाली करते हैं। हम भी ये आदत डाल लें। बाबा रोज ज्ञान घास खिलाते हैं, मुझे एकांत में बैठकर उसकी जुगाली करनी है, चिंतन करना है। कम से कम एक पॉइंट ले लें रोज की मुरली से। एक पॉइंट है तो अथाह, लेकिन कम से कम एक पॉइंट लेकर उसकी गहराई में मुझे उतरना है, उसे अपना बनाना है। उसे घोटना है, जितना घोटेंगे बाबा कहते हैं उतना नशा चढ़ेगा। तीसरा स्टेप है हम अनुभव करें, उस ज्ञान को केवल सुनना नहीं है, समझना नहीं है, लेकिन अनुभव करना है। और अनुभव में कब आती है कोई चीज, जब उसे यूज करते हैं, जब उसे प्रयोग करते हैं। एक होता है विचार सागर मंथन करना, वो ज्ञान के स्तर पर हुआ, बुद्धि के स्तर पर हुआ, समझ के स्तर पर हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली उसे यूज करना है, प्रयोग करना है। जब हम प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब हमें एक्सपीरियंस होता है। और बाबा कहते हैं बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बनो, अनुभव की अथॉरिटी बनो। जो अनुभवी होता है वो कभी भी धोखा नहीं खाता, और जो अनुभवी नहीं होता केवल सुनता सुनाता रहता है वो धोखा खा सकता है। एग्जाम्पल क्या देते हैं बाबा, पंडित जी कहते थे राम का नाम लो तुम्हारा बेड़ा पार, ग्वालन पार और पंडित जी अंदर। क्यों? अनुभव नहीं था, एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। इसीलिए ज्ञान एक्सपेरिमेंट के लिए है, जीवन के लिए है। ऐसी पॉइंट्स आप निकालें कौन सी बिंदु ज्ञान के मुझे नशा चढ़ाते हैं, कौन से ज्ञान के बिंदु मुझे निराशा से उभार देते हैं, कौन से ज्ञान के बिंदु मुझे उमंग उत्साह के पंख दे देते हैं, कौन से ज्ञान के बिंदु मुझे बिल्कुल उड़ा देते हैं, नशा चढ़ा देते हैं, ऊर्जा भर देते हैं, मुझे शक्तिशाली बना देते हैं। ऐसे बाबा के महावाक्य अपनी डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में नोट करके रखो। रोज की मुरली में आते हैं, अव्यक्त मुरली भरे हुए हैं इन सब से, ज्ञान रत्नों से। उनमें से भी चुन चुन के जो मोती आपको बहुत प्रिय लग रहे हैं निकाल के रखो, और ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो मुझे अंतर्मुखी करें, ऐसे पॉइंट्स जो मुझे नशा चढ़ा दें, ऐसे पॉइंट्स जो मेरे अंदर वैराग्य भर दें, ऐसे पॉइंट्स जो मुझे उड़ा दें वतन की ओर। पढ़ते ही एक पॉइंट ध्यान में आते ही बिल्कुल। एक भाई की बहुत बड़ी समस्या थी लंबे समय से कि मैं पवित्र दृष्टि नहीं रख पाता, मेरी दैहिक दृष्टि हो जाती है, ज्ञान में लंबा समय हो गया है, बार बार मैं निराश हो जाता हूं। अव्यक्त मुरली में एक पॉइंट आई कि बच्चे शव को नहीं शिव को देखो, एक लाइन, बच्चे शव को नहीं शिव को देखो, यदि शव को देखेंगे तो शव का विष तुम्हारे अंदर चला जाएगा, तुम मूर्छित हो जाओगे, मृत्यु भी हो सकती है, इसीलिए शिव को देखो, शिव को देखो, मुक्त हो जाओगे, शिव को देखो, अमृत से भर जाओगे। एक ज्ञान के पॉइंट ने इतने लंबे समय का जो संघर्ष था उस संघर्ष से मुक्त कर दिया। इतना बल है ज्ञान में, इसीलिए ज्ञान को खजाना कहा गया है, इसीलिए ज्ञान को बल कहा जाता है कि एक ज्ञान का बिंदु भी आत्मा को मुक्त कर देता है, बड़े से बड़े संस्कार से बड़ी बात से बड़ी उलझन से। बाबा कहते हैं तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना, सबके घर में फोटो है ना लिखा हुआ, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना, मैं हूं ना, तो क्या उस पर भरोसा नहीं है, फिर भी चिंता करते रहते हैं। बाबा आप बैठे तो हो वो तो ठीक है, लेकिन ये बात ऐसी है आप हो वो तो ठीक है, लेकिन ये बात है ही ऐसी ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका मतलब उस पर निश्चय नहीं है ना। हमारी दादियां क्या कहती थी, बाबा बैठा है, बड़े से बड़ा कार्य यज्ञ का संपन्न हुआ, इतना बड़ा यज्ञ, इतनी लाखों आत्माएं, उनकी जिम्मेवारी, हर सेंटर पे पता नहीं कितनी सारी बातें होती हैं, हर भाई बहन के कितनी सारी बातें होती हैं, होती हैं या नहीं होती, सबकी बातें दादियों तक आती थी। दादियां क्या कहती थी, बाबा बैठा है, ठीक हो जाएगा। और ठीक हुआ या नहीं हुआ, निश्चय है उसमें विजय है, और निश्चय नहीं है तो नैया में जा रहे थे लोग, नैया डगमगाने लगे, ऐसा लगा कि अब नैया डूब ही जाएगी, तो उसमें जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा, हे राम हे राम हे राम, आओ बचाओ बचाओ, राम जी चल पड़े उधर से। लेकिन लगा कि नहीं, राम जी शायद बिजी हैं, आ नहीं रहे हैं। डगमगाना जारी हो गया और तेज, बोले हे श्याम जी आओ। तो राम जी जो आ रहे थे वो रिटर्न हो गए कि अब तो श्याम जी का बुलावा आ गया, तब श्याम जी चल पड़े। अब फिर थोड़ी देर हुई, कहते ना भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन जब थोड़ी देर हो रही होती है तो हमारी जो सब्र का बांध है वो टूट जा, टूटना चाहिए। श्याम जी को बुलाया, फिर से नहीं, थोड़ा देर हुआ, और भी ज्यादा नाव हिल रही है, हनुमान जी को बुलाना शुरू कर दिया, गणेश जी को बुलाना शुरू कर दिया। तो जो आ रहे थे सबके सब रिटर्न, और नैया डूब गई, बैठा है बैठा है। बाबा ने कहा मैं आया ही हूं तुम्हारे बोझ हरने के लिए, तुम मुझे अपने बोझ दे दो, बोझ हरने आया हूं। जिसने इस बात को हृदय से आत्मसात कर लिया उसने बोझ दे दिया। अनुभव करें कैसे बाबा बोझ लेते हैं, कैसे हल्का करते हैं। तब तो ज्ञान का बल है, तब तो ज्ञान खजाना है, अन्यथा ज्ञान केवल सुनने सुनाने तक ही सीमित रह जाता है, अनुभव में नहीं आता। बाबा ने कहा हिम्मत का एक कदम तुम बढ़ाओ, हजार कदम मदद के मैं बढ़ाऊंगा। अब ये बात मैं सबको सुनाता हूं, मेरे पास व्यक्तिगत क्या अनुभव है इसका, कि फलाने समय पे हिम्मत का एक कदम मैंने बढ़ाया और भगवान ने हजार कदम बढ़ा के मुझे थाम लिया, इस बात का अनुभव है। जब प्रैक्टिकली यूज करेंगे तब अनुभव होगा, और जब अनुभव करते जाएंगे तब फोर्थ स्टेप आएगा जहां तक हम सबको पहुंचना है, वो है स्वरूप बन जाना। ज्ञान मेरी नस नस में समा जाए, ज्ञान मेरा जीवन बन जाए। ज्ञानी तू आत्मा हूं मैं, ज्ञान अलग और मेरा जीवन अलग नहीं है। योगी तू आत्मा बाबा मुझे कहते हैं, योगी जीवन वाला कहते हैं, योग और जीवन अलग नहीं है, ज्ञान और जीवन अलग नहीं है। ज्ञान केवल पुस्तक में रखने के लिए नहीं है, ज्ञान आचरण के लिए है। इसीलिए एक बार रमेश भाई जी अव्यक्त बाप दादा से, रमेश भाई जी को सभी जानते हैं ना, हमारे वरिष्ठ भ्रातम, अव्यक्त बाप दादा से मंच पर वो पूछ रहे थे कि बाबा गीता ज्ञानदाता आप हैं, श्री कृष्ण नहीं है, ये बात हम सारे संसार में कैसे प्रत्यक्ष करें। तो बाबा ने एक लाइन कही थी, बाबा ने कहा जिस दिन ये गीता का ज्ञान अर्थात मुरली तुम्हारे जीवन में आ जाएगी उस दिन गीता ज्ञानदाता सारे संसार में स्वतः प्रत्यक्ष हो जाएगा। जिस दिन गीता का ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ जाएगा उस दिन गीता ज्ञानदाता सारे संसार में स्वतः प्रत्यक्ष हो जाएगा, तुम्हें नगाड़ा बजाने की ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सेवा करें, सबको बताएं कौन है गीता ज्ञानदाता, लेकिन बाबा ने सार ये कह दिया था ज्ञान जब जीवन में आएगा, ज्ञान जब स्वरूप में आ जाएगा तब तुम्हें किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हम ये कहेंगे कि मेरा जीवन ही ईश्वर का संदेश है। लोग पूछें भगवान कहां है तो जवाब क्या होना चाहिए, मेरे दिल में है। और लोग पूछेंगे भी नहीं, जब ज्ञान आपके जीवन में आ जाएगा तो ज्ञान सागर आपके जीवन में दिखाई देगा, उसका स्वरूप आप में दिखाई देगा। इस माध्यम से हमें सेवा करनी है, ज्ञान को जीवन में लाकर सेवा करनी है। राइट, आज सुबह भी सबने मुरली सुनी ना, सुनी ना, उसे इस रूप में याद रखें, रोज की एक पॉइंट अपने पास नोट करें, उसे इसी आधार पे सुनना, दूसरों को सुनाना। ज्ञान जितना देंगे उतना बढ़ेगा, इसलिए दें जरूर। दूसरा, समझना है ज्ञान को, अनुभव करना है, समझने के लिए चिंतन करें, अनुभव करने के लिए उसे प्रयोग करें और धीरे धीरे स्वरूप में उतारते जाएं। जो जितना ज्ञान धन से संपन्न होगा, बाबा क्या कहते हैं, वो उतना ही स्थूल धन से संपन्न होगा। यदि स्थूल धन नहीं है तो ज्ञान धन की कमी है। जो संगम में जितना इस ज्ञान धन से संपन्न होता चलेगा, उतना ही वो भविष्य में इस स्थूल धन धान्य से संपन्न होगा। दूसरा खजाना, दूसरी निधि, जब ज्ञान खजाना हमारे जीवन में आ जाता है तो क्या होता है? खुशी का खजाना। ज्ञान मिला कि बस बच्चे अब मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम तो स्वर्ग के मालिक बनोगे, देखो मेरी हथेली में क्या है तुम्हारे लिए, बहिष्ट है, दुख के दिन बीते के बीते हैं, गम की रातें बीत गईं, अब तो सुख का सवेरा होने वाला है। ये सुंदर संदेश जब भगवान ने दिया, क्या हुआ? क्या हुआ? खुशी। तो खुशी खजाना बन जाए मेरे जीवन का, खुशी गुम ना हो। बाबा हमेशा कहते हैं खुश रहते हो बच्चे? हम कहते हैं हाँ हाँ बाबा हम खुश रहते हैं। अगला प्रश्न क्या रहता है बाबा का? सदा खुश रहते हो? सदा खुश? और फिर हम सोचने लगते हैं कि बाबा सदा सदा खुश। जब भगवान खजाने के रूप में हमें मिल गए, ज्ञान अविनाशी खजाना हमें मिल गया, तो खुशी हमारी गुम क्यों होती है? खुशी गुम ना हो। बाबा ने कहा सब कुछ चला जाए, खुशी ना जाए, यहां तक ये कहा प्राण चले जाए लेकिन खुशी ना जाए, प्राण चले जाए खुशी ना जाए। सब कुछ जो भी मैंने इकट्ठा किया है, धन धान्य इकट्ठा किया है, घर बनाया है, गाड़ी है, बंगला है, पद प्रतिष्ठा है, सब चला जाए, क्या ना जाए? हो सकता है? हो सकता है मोबाइल आपका चला जाए आज? देखो खुशी आ गई आपके चेहरे पे। पहली चेकिंग हो गई है कि मोबाइल चला जाए तो क्या मोबाइल के साथ साथ मेरी खुशी चली जाएगी? मेरा बैग चला जाए, मेरी अटैची चली जाए, अभी मैं गया, मैं अपने रूम में देखा मेरा बैग लेके कोई चला गया है, बैग चला गया, क्या बैग के साथ साथ मेरी खुशी चली जाएगी? थोड़ा सा चला जाएगा। अच्छा, जानी चाहिए? प्रश्न ये है जानी चाहिए। एक बहुत सुंदर प्रसंग, हमारे एक भाई बहुत अच्छे पद पे थे, पोजीशन पे थे, उनका वो पद चला गया, घर में आग भी लग गई, सारा जो भी कमाई था, जो भी चीजें थी सब चली गई, तो एक साथ सभी चीजें, उधर से पद चला गया, इधर से घर में आग लगी, घर से सारी चीजें नष्ट। ज्ञान में थे, उनसे जब ये पूछा सब कुछ चला गया अब क्या करोगे, एक सुंदर लाइन इतने नशे के साथ, इतने निश्चय के साथ उसने कहा, सब कुछ चला गया लेकिन बाबा मेरे साथ है, बाबा नहीं गया है, बाबा है, बाबा नहीं गया, और मुझे पूरा विश्वास है वो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। सब मुझे छोड़ के चले जाएं, ये व्यक्ति छोड़ के जाने वाले हैं, ये वस्तु जिसके लिए, बैग के लिए आप कह रहे हैं ना, बैग क्या, आपके घर में जो भी चीजें हैं वो सब चीजें जाने वाली हैं, व्यक्ति भी जाएंगे, वस्तु भी जाएंगे, वैभव भी जाएंगे, पद सब कुछ नष्ट होगा। बाबा ने कहा निराधार होना होगा तुम्हें, कोई आधार काम नहीं आएगा, इसीलिए बाबा ने कहा कुछ ना हो तो भी क्या तुम खुश रह सकते हो, क्योंकि भगवान है ना। जवाब कितना उसका सुंदर, निश्चय के साथ बाबा है ना। और संसार में भी कहते हैं, इसको नोट रखो अपने हृदय में, रब है तो सब है। जिस गीत से हमने शुरुआत की थी, बाबा तू ही मेरा खजाना है, ये अनुभव करो, ये केवल गाना नहीं है, ये केवल बताना नहीं है, तू ही मेरा खजाना है, कुछ भी ना हो बस तू है ना, तू है ना। लौकिक में बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, लौकिक प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए गीत गाते हैं, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो मुझे कोई कमी नहीं है, अंधेरे भी है ना तो अंधेरे में भी रोशनी मिल रही है, बस तू साथ हो तो खुशी। उससे मेरी खुशी है, मेरी खुशी यहां की चीजों से नहीं। यदि व्यक्ति पर मेरी खुशी आधारित है, वस्तु पर मेरी खुशी आधारित है, किसी प्राप्ति पर मेरी खुशी आधारित है, तो आपकी खुशी सदा नहीं रहेगी, सदा नहीं रहेगी। इसीलिए किसी पर मेरी खुशी आधारित है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। एक गृहस्थ एक आश्रम में गाय दे के गया, दूध देने वाली गाय। शिष्य बहुत खुशी से भागा भागा गया गुरुजी के पास, कहा गुरुजी गुरुजी एक गृहस्थ ना गाय दे के गया है। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, अब हम रोज उसका दूध पिया करेंगे, खुशी की बात है, रोज उसका दूध पिया करेंगे। कुछ दिन बाद वो गृहस्थ आया, अपनी गाय लेके वापस चला गया। शिष्य उदास होकर के गुरुजी के पास गया, गुरुजी वो जो गृहस्थ हमें गाय देके गया था, जिसका जिसका दूध रोज पी पी के हम आनंदित हो रहे थे, वो अपनी गाय लेके चला गया। तो गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, रोज रोज जो गोबर उठाने का झंझट था वो खत्म हो। तो मेरी खुशी गाय है तो भी मेरी खुशी है, गाय नहीं है तो भी मेरी खुशी। एग्जाम्पल, मेरी खुशी उस पर आधारित हो, उससे होने वाली प्राप्ति पर आधारित हो। मेरी खुशी अविनाशी तभी होगी जब अविनाशी प्राप्तियों पर और अविनाशी पिता पर मेरी खुशी आधारित है। ऐसी खुशी अपनी बनाओ। और बाबा कहते हैं ज्ञान से इसे कनेक्ट करें तो बाबा कहते हैं बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ। खुशी उसकी अविनाशी हो जाती है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है जो ज्ञान का सिमरण करता रहता, क्या मिला क्या पाया, वाह रे मैं वाह रे मैं। ये गीत अंदर से बजता रहता है। और खुशी हमारी कोई बाहर की खुशी नहीं है, ये अंतर की खुशी है। हम कोई लॉफिंग क्लब में नहीं जाते हंसने के लिए, है ना। कई बार लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं अरे आप तो वैसे ही हैं जैसे टीवी पे दिखाई देते हैं, जैसे आप वहां मुस्कुराते हैं वैसे यहां भी मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूं हम लोग टीवी पे मुस्कुराने के लिए नहीं बैठते, मुस्कुराते हैं इसलिए टीवी पे बैठे हुए। हमारी मुस्कान प्लास्टिक की नहीं है, बनावटी नहीं है। हमारी मुस्कान कहां से आती है? अंदर से आती है। हमने वो पा लिया है जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया तरस रही है, भटक रही है, प्यासी है, पाना था सो पा लिया। ये सिमरण जब चलता रहता है, ये प्राप्ति हमें आनंद देती है। तो एक तो सिमर सिमर सुख पाओ, खुशी का खजाना तब बढ़ता चलेगा। दूसरा, जितना देंगे खुशी उतना बढ़ेगा। किसी ने कहा कि जिंदगी निकल गई, जिंदगी गुजर गई खुशी की तलाश में, अंत में जाकर पता चला कि खुश तो वो थे जो खुशियां बांट रहे थे। तो खुशी की तलाश मत करो, खुशी बांटना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक आप खुश रहेंगे। ये खजाना है जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। बांटो, बांटो अपनी खुशियां, मुस्कान बांटो, खुशी बांटो। इसी की तो तलाश है लोगों को। लोगों के चेहरे कैसे हो गए हैं ना, मुरझा गए, और हमारे चेहरे प्रसन्नता से खिले रहते हैं। इसलिए खिला हुआ चेहरा मधुबन से लेके जाना गिफ्ट, कोई मुरझाइस नहीं, कोई चेहरा चिंता वाला चेहरा ना हो, ऐसा ना लगे कि मैं इसके चेहरे में 12 क्यों बजे हुए हैं, है ना, चेहरे पे 12 ना बजा हुआ हो, 12:30 बजा हुआ हो, अच्छा चेहरा चेहरे पे 1 बजा हो, 1 अर्थात 1 की याद, चेहरे पे हमेशा 1 बजाओ, 1 अर्थात 1 की याद रहेगी, तब चेहरा खिला हुआ होगा, राइट। 2 को हटा दो, जब दूसरा आता है तब 12 बजता है, 1 के साथ जब 2 जुड़ जाता है ना तो 12 बजता है। इसीलिए दूसरे को जुड़ने मत दो, किसी की जरूरत नहीं है। 1 सदा खुश रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। और देखो कौन सी चीजें मेरी खुशी को गुम कर रही हैं, उन चीजों से अपने आप को अलग कर लो। जो खुशी गुम करने वाली चीजें हैं ना, दूसरों का चिंतन, दूसरों का दर्शन, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, दूसरों को देखा, दूसरा आया, कोई भी दूसरा आया, आपकी खुशी गुम हो जाती है, तो दूसरी हमारी निधि है खुशी। तो मुस्कुराते रहेंगे ना, राइट? एक दूसरे को देख के मुस्कुराइए, एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ, हाँ, मुस्कान बांटो, खुशी बांटो, हाँ, राइट। ऐसे जब भी एक दूसरे को देखें, मुस्कान बांटेंगे, खुशी बांटेंगे, राइट? ये पहले करना। तीसरी जो हमारी निधि है वो है पवित्रता का खजाना। पवित्रता का खजाना। खुशी तब गुम हो जाती है जब पवित्रता कहीं ना कहीं डगमगाती है। जहां पवित्रता है, बाबा ने कहा है, वहां सुख शांति है। पवित्रता सुख शांति की जननी है, इसीलिए सब कुछ चला जाए, मेरी पवित्रता ना जाए। बाबा ने कहा है, धरत परो लेकिन धर्म ना छोड़ो। जो अपनी पवित्रता की रक्षा करता है, पवित्रता उसकी रक्षा करती है, उसके खजानों की रक्षा करती है, उसके जीवन की रक्षा करती है। पवित्रता की रक्षा ऐसे करो जैसे आप अपने प्राणों की रक्षा करते हो। शास्त्रों में भी वर्णन है, बिंदु का नाश अर्थात जीवन शक्ति का नाश ही मृत्यु है। और जीवन शक्ति, बिंदु का संचय, उसका संग्रह, उसे बचाना, यही जीवन है। बिंदु अर्थात जीवन शक्ति जो हमारे शरीर में निर्मित होती है, उसका नाश ना होने दें किसी भी कारण से, यही हमारा जीवन है। और बाबा ने आते ही यही बात हमसे कही, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। भगवान को हमसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारी अपवित्रता चाहिए। इसीलिए इस भट्टी से प्रण पूर्वक कि अब तक जैसा भी रहा, लेकिन आज से ये दृढ़ प्रतिज्ञा कि संकल्प में भी स्वप्न में भी मैं अपनी पवित्रता को खंडित नहीं होने दूं। बाबा ने एक बार साकार मुरली में कहा, जो हृदय को छूने वाली है, कि बच्चे तुम्हारा बाप तुम्हारे सम्मुख बैठकर तुमसे अपवित्रता की भीख मांगता है। सोच, तुम्हारा बाप तुम्हारे सम्मुख बैठकर तुमसे अपवित्रता की भीख मांगता है। कैसे शब्द हैं, मार्मिक है ना, इसीलिए हम दे दे। अब तक अपवित्रता में कितनी डुबकी लगा चुके हैं ना, अब भी क्या संकल्पों से लगाना जरूरी है? यदि लगाते रहे तो खजाने नष्ट होते रहेंगे, फिर खुश नहीं रह सकेंगे, ज्ञान बुद्धि में टिकेगा नहीं। जो ज्ञान इतना अमूल्य है, खजाना है, बुद्धि में टिक नहीं सकता, खुशी रह नहीं सकती यदि पवित्रता का खजाना नहीं है। तो शास्त्रों में आता है कि असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवराज इंद्र और सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे कि गुरुदेव कैसे फिर से राज्य प्राप्त करें। गुरु ने कहा, वो जो असुर है जिसने तुम्हें जीता है, स्वर्ग को जीता है, वो है तो असुर लेकिन पवित्रता का पालन करता है, बहुत ही धार्मिक है, रोज पूजा करके जब वो अपनी चौखट पे आता है, जो भी द्वार पे होता है, जो मांगता है वो दे देता है। कल तुम ऐसा करना कि ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाना, और जब वो कहे कि क्या चाहिए ब्राह्मण देव, तो कहना आपकी पवित्रता मुझे दे दो, आपकी पवित्रता चाहिए। इंद्र ने वही किया। जब उससे पवित्रता मांगा उस असुर से, तो उसे पता था कि पवित्रता की शक्ति कितनी महान है, इसलिए उसने कहा, आप और कुछ मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, गौ दान मैं करने को तैयार हूं, भूमि दान करने को तैयार हूं, इस पवित्रता को मेरे पास रहने दें। लेकिन इंद्र ने कहा, नहीं, यदि दे सकते हैं तो यही दीजिए, अन्यथा मैं चलता हूं। जाने लगे, उनकी द्वार का नियम था कि कोई भी मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं जाएगा। वापस बुलाया, हाथ में जल लिया, संकल्प किया कि मैं अपनी पवित्रता इस ब्राह्मण को अर्पित करता हूं। जैसे ही पवित्रता उसे दी, वैसे उस असुर के शरीर से एक और ज्योति निकल के जाने लगी। उसने कहा, मैं शांति हूं, जहां पवित्रता रहेगी वहीं मैं रहूंगी। दूसरी ज्योति निकली, उसने कहा, मैं सुख हूं। तीसरी ज्योति निकली, उसने कहा, मैं शक्ति हूं। चौथी ज्योति निकली, उसने कहा, मैं स्वास्थ्य हूं। पांचवी ज्योति निकली, उसने कहा, मैं समृद्धि हूं। जहां पवित्रता रहेगी वहीं हम रहेंगे। तो जहां पवित्रता है वहीं शांति है, सुख है, वहीं शक्ति है, वहीं समृद्धि है और वहीं स्वास्थ्य है। और जहां पवित्रता है वहीं स्वर्ग है। बिना पवित्रता के ना घर स्वर्ग है ना वो स्वर्ग स्वर्ग है। अपवित्रता के आने से ही स्वर्ग नरक बना है, इसीलिए पवित्रता के खजाने को कभी भी नष्ट मत होने देना। संकल्प में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, ऐसी दृढ़ता लेकर के यहां से जाना है। ये दृढ़ संकल्प। एक मिनट सभी खड़े होंगे अपने स्थान पर और बाबा के सामने अपने हृदय पर हाथ रखते हुए संकल्प करें पूरी दृढ़ता के साथ कि बाबा मैं संपूर्ण पवित्रता का पालन करूंगा। उतरने दें अपने हृदय में इस प्रतिज्ञा को। अब तक जैसी भी स्थिति थी, लेकिन आज से, अभी से मैं संकल्प वाणी कर्म में स्वप्न तक भी संपूर्ण पवित्रता के व्रत का पालन करूंगा। देखें पवित्रता के सागर बाबा अपनी पवित्र दृष्टि से, अपनी पवित्रता मुझ में भर रहे हैं। मैं पवित्रता से ओतप्रोत होता जा रहा हूं। मेरे संकल्प से इसे सदैव फलीभूत होने के लिए बाबा वरदान दे रहे हैं बच्ची विजय भाव, विजय भाव, विजय भाव। बैठेंगे अपने स्थान पर अपने सुंदर संकल्प के साथ। और बाबा ने यह भी कहा है, इसे आप हर ट्रैफिक कंट्रोल में फिक्स करके रख लो, सारे दिन में कम से कम 5 बार मुझे 5 स्वरूपों का सुंदर अभ्यास पवित्रता से जोड़कर कर लेना है। बाबा ने 1 बार 8 बार रोज ही 5 स्वरूपों का अभ्यास करने का हम सबको एक होमवर्क दिया था। हर ट्रैफिक कंट्रोल में कम से कम 5 बार हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। अनादि स्वरूप मेरा संपूर्ण पवित्र, पहुंच जाओ, थोड़ी थोड़ी देर लगता है। अनादि स्वरूप संपूर्ण पवित्र, आदि स्वरूप मैं संपूर्ण पावन देव, पुच्छ में मैं पवित्रता का देवता देवी, संगम में पवित्रता के सागर की गोद में हूं, और अंतिम फरिश्ता स्वरूप सारी सृष्टि पर पवित्रता का वर्षा कर रहा हूं, दान कर रहा हूं सारी सृष्टि को। पूरा कल्प मेरा पवित्रता से भरा हुआ है, पूरा कल्प मेरा हर स्वरूप। जितना गहराई से इसकी अनुभूति में उतरते हैं उतना ही पवित्रता नेचुरल होता चलता है। चौथी हमारी निधि, चौथा खजाना हमारा समय का खजाना। बाबा इसे बहुत अंडरलाइन करते हैं कि बच्चे समय तुम्हारी संपत्ति है, जो समय को मूल्य देता है समय उसे मूल्यवान बना देता है। संसार में भी ये कहा जाता है और पूरे सृष्टि चक्र में ये जो समय है सबसे ज्यादा मूल्यवान है, सबसे ज्यादा अनमोल है, क्योंकि इस समय भगवान उवाच है। संगम युग का 1 सेकेंड अन्य युगों के 1 वर्ष के समान है। संगम युग का 1 सेकेंड अन्य युगों के 1 वर्ष के तुल्य है। अब विचार करें इतने अनमोल समय को हम कैसे बिता रहे हैं, टीवी देखते हुए, मोबाइल में रील्स देखते हुए, यहां वहां की गपशप करते हुए, संसार समाचार सुनते हुए, या फिर एक एक सेकेंड में अपने एक एक जन्म की प्राप्ति करते हुए। बाबा ने कहा है, एक कदम में पदम है, हर कदम में पदम। जब तुम एक कदम उठाते हो, पदमों की कमाई हो जाती है। कब? यदि तुम याद में उठाते हो। क्या मैं हर कदम में पदम की कमाई कर रहा हूं? ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। जितनी कमाई करनी है अभी कर लें, जितना खजाना जमा करना है अभी जमा कर लें, फिर जिसके पास जितना रह जाएगा बस उतना ही रह जाएगा। पूरे कल्प के लिए जमा करने का बैंक अभी खुला है। क्या मैं हर कदम में पदम जमा करने का इतना अटेंशन अपने ऊपर रखता, या मेरा समय ऐसे ही बीत रहा है जैसे सामान्य लोगों का बीतता है? भट्टी में इस बात पर बहुत गहराई से विचार करके जाएं, अपने लिए ऐसा मन का टाइम टेबल बना के जाएं कि मेरा मन बाबा की याद में निरंतर रहे। बाबा ने कहा है, समय और श्वास जुड़ते हैं, दोनों को ही खजाना कहा जाता है। समय, श्वास, दोनों खजाने। और बाबा ने कहा है, जिस श्वास में मेरी याद नहीं है वो श्वास निष्फल है। जिस श्वास में मेरी याद नहीं वो श्वास निष्फल है। अब खुद हर एक चेक कर ले, कितनी श्वासें मेरी सफल हो रही है और कितनी श्वासें मेरी निष्फल हो रही है। मेरे श्वास श्वास में बाबा 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 की धुन लगी रहे। काम तो दुनिया वाले भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी श्वास परमात्मा की याद के साथ सफल होती चले। कर्म योगी हम बन जाएं, योगी जीवन वाले बन जाएं, तो हर श्वास में बाबा की याद, हर कदम में पद्मों की कमाई, इतना मैं करता चल रहा हूं या इस अमूल्य समय को नष्ट कर रहा हूं? देखें, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। फिर तो ये दिन हमें याद आया करेंगे, जैसे हमें साकार के दिन हम याद करते हैं। साकार के दिन कितने प्यारे थे, वो अव्यक्त मिलन के दिन अब भी याद आते हैं ना, कि बाबा कितने हैं, मतलब प्यार से हम सबको भरते थे। तो ये दिन हम सबको याद आएंगे। इसलिए कहा ये चौथा खजाना ना बहुत वैल्यूएबल है, अभी भी टू लेट नहीं है। हम चाहें तो बाबा से अभी भी वो ले सकते हैं जो बाबा देने आए हैं। बाबा बैठे हैं, वतन में हैं, मधुबन में हैं। लो, ये समय लेने का है। समय नष्ट ना हो, भगवान फिर नहीं मिलेंगे। सारी कल्प सब कुछ मिल जाएगा लेकिन बाबा नहीं मिलेंगे ना। इस समय को वरदान है, जो चाहो ले सकते हो, जो चाहो बन सकते हो। इसलिए सारे कल्प के लिए इतना ले लो, भगवान से इतना ले लो कि मेरे हाथ सारे कल्प कैसे हो, ऐसे देने वाले, ऐसे नहीं। इसलिए इस पल को ना, इस समय को खजाने की तरह यूज करो, खजाने की तरह। एक एक पल मेरा बाबा की याद में, बाबा की सेवा में सफल हो। केवल बाबा की याद और सेवा। यदि मैं घर में भी हूं, लौकिक कार्य भी, जॉब भी कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? बाबा के लिए। मेरा घर बाबा का घर है, मेरा कार्य बाबा का कार्य है। जॉब कर भी रहा हूं बाबा के लिए कर रहा हूं, तो बाबा 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 वो मेरी श्वासों में। पांचवा खजाना संकल्प का खजाना। पांचवी निधि है संकल्प की निधि। और बाबा ने इसके लिए कहा है, तुम्हारे संकल्प की ऊर्जा ही तुम्हारे भाग्य की ऊर्जा है। तुम्हारी संकल्प की ऊर्जा तुम्हारे भाग्य की ऊर्जा, अर्थात जो गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, वो योगी जो निर्संकल्प रहता है वो संसार के लिए वरदान है। दादी गुलजार जी के रथ को बाबा ने क्यों छूना? क्योंकि संकल्प की शक्ति बहुत उनके पास जमा थी, व्यर्थ कभी नहीं। दादी के लिए बाबा ने यह कहा, संकल्प की शक्ति बच्ची के पास बहुत जमा है, इसीलिए बाबा ने इसे रथ के रूप में चुना। जो अपने संकल्पों की बचत करेंगे अभी, वही संकल्प सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। और बाबा ने कहा है बच्चे, जो व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करेंगे उन्हें ही परमात्मा अवार्ड मिलेगा। इसलिए व्यर्थ और नेगेटिव को हम अवॉइड करना सीखें, उसी में ना उलझे रहें। देखें सारे दिन में कितना व्यर्थ और नेगेटिव चलता है ना, कितना व्यर्थ और नेगेटिव। दादी जानकी जी कहा करती थी, थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले सोचो। हमारा स्लोगन है ना, कम सोच कम क्या है, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो। इसको संकल्प के साथ भी जोड़ दो, कम सोचो धीरे सोचो मीठा सोचो, सोच कर सोचो तौल कर सोचो। ये अपने संकल्प के लिए करते हैं, क्योंकि संकल्प खजाना है जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते कि हम क्या सोच रहे हैं। संकल्प जितना ज्यादा बहता चला जाएगा उतनी ही ज्यादा हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं, एकाग्र हम नहीं हो पाते, बाबा की याद में नहीं टिक पाते, क्योंकि संकल्प की शक्ति नहीं है। संकल्प की शक्ति नहीं है इसलिए छोटा सा कार्य भी हम नहीं कर पाते। कई बार एक संकल्प लेते हैं कि कल से मैं इतने बजे उठूंगा, दो दिन उठते हैं और तीसरे दिन परनाला फिर वहीं बहने लगता है। क्यों? संकल्प में शक्ति नहीं है, क्योंकि संकल्प का खजाना जमा नहीं है, अन्यथा हम जो चाहें वो कर सकते हैं। भगवान मेरे पिता वो संकल्प से जब सृष्टि रच सकते हैं तो मैं उनकी संतान, अपने संकल्प से क्या कोई भी सृष्टि नहीं रच सकता, किसी भी कमी को नष्ट नहीं कर सकता, अपने जीवन को निर्मित नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि संकल्प के खजाने को नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए बाबा ने ये कहा था, प्यार से बाबा हमें प्राइस का टेम्पटेशन देते हैं कि बच्चे जो व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करेगा उसे परमात्मा अवार्ड मिलेगा। तो करेंगे ना, कौन कौन परमात्मा अवार्ड लेगा आप में से, हाँ तो उठाएं जरा, परमात्मा अवार्ड। हाँ, ये सबसे बड़ा अवार्ड है, मैं तो कहता हूं इससे बड़ा अवार्ड और कुछ नहीं। भगवान यदि ये कहे मेरे लिए, यदि ये कहे कि यदि देखना है ना इसे देखो, देखना है तो इसे देखो, यदि भगवान मेरे लिए ये कहे इससे बड़ा अवार्ड और कुछ नहीं है। यदि व्यर्थ और नेगेटिव की बात आए, मुझे बाबा एग्जाम्पल के रूप में यदि खड़ा करके कहें देखो यदि व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त कैसे हुआ जाता है इसे देखो, ये कहें मेरे लिए, ये अवार्ड है। इसलिए संकल्प की बचत, अपने मन के लिए बहुत सुंदर टाइम टेबल जरूर बनाओ। बाबा ने इस सीजन में भी कहा है अपने मन की दिनचर्या सेट करो, मन की दिनचर्या सेट करो। क्या सोचते हैं हमें ही पता नहीं होता। बाबा ने कहा जब सारे दिन के लिए अपने तन की दिनचर्या बनाते हो, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने मन की दिनचर्या बनाओ कि मन को आज क्या क्या सोचना है, कहां कहां जाना है, क्या क्या अभ्यास करना है, किन अनुभूतियों में रहना है। तब मन की शक्ति जमा होगी, संकल्प की शक्ति जमा होगी, तब हम शक्तिशाली हो पाएंगे। और यही संकल्प की ऊर्जा हमारे पद का आधार बनेगी, यही संकल्प की शक्ति हमें सिद्धि प्रदान कराएगी। क्योंकि आने वाले समय में जिस सिद्धि की मैं प्रारंभ में बात कर रहा था, हमें अनेक आत्माओं को निरोगी बनाना होगा, अनेक आत्माओं के दुख हरने होंगे, अनेक जो भटकती हुई आत्माएं हैं उन्हें मुक्ति प्रदान करनी होगी, अनेक आत्माएं जो दुख दर्द में करा रहे होंगे अपनी दृष्टि से अपने संकल्प से उनके दर्द दूर करने होंगे। ये कार्य वही कर पाएंगे जिनके पास संकल्प की शक्ति होगी, संकल्प की शक्ति। छठवीं हमारी निधि है, एक एक खजाना बहुत विस्तृत है लेकिन वक्त को देखते हुए मैं सार में कुछ बातें रख रहा हूं। छठवीं हमारी निधि है दुआओं का खजाना, दुआओं की निधि। बाबा कहते हैं दुआ एक खजाने का काम करता है, इसीलिए लोग भी आज कहते हैं ना आजकल जमाने में, दुआओं में याद रखना और कुछ मत करना, भले अपनी दुआओं में याद रखना। डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करके बाहर निकलता है तो क्या कहता है, दवा तो हमने कर दी, अब आप दुआ कीजिए, यदि आप दुआ करेंगे तो हो सकता है वो बच जाए। दुआओं में असर है, इसीलिए दिल से सबको दुआएं दें और दिल से दुआएं लें। दुआ बाबा कहते हैं रॉकेट का काम करता है। एक होता है चल के जाना, एक होता है साइकिल से जाओ, कार से जाओ, एक होता है भले प्लेन से जाओ, लेकिन सबसे ज्यादा स्पीड रॉकेट की है। और बाबा ने इसके लिए ही केवल एक चीज के लिए रॉकेट शब्द यूज किया। दुआएं रॉकेट का काम करती हैं। जिसे दुआएं मिलती हैं आत्माओं की, परमात्मा की, उसका पुरुषार्थ रॉकेट की तरह आगे बढ़ता है। इसीलिए सबको दिल से दुआएं दो, कोई कैसा भी है दिल से दुआ दो, दिल से दुआ दो। इसका भला हो, कल्याण हो, इसका पुरुषार्थ अच्छा हो, इसका जीवन निर्विघ्न हो जाए, ये जीवन में सब कुछ प्राप्त करे, ईश्वर से जुड़ जाए, जिससे भी मिलो, जिसे भी देखो, दिल से दुआएं दो। और बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही है, यदि तुम कम समय में ज्यादा से ज्यादा जमा करना चाहते हो ना, तो उसकी विधि बाबा ने बताई है। अब लास्ट समय में हम पहुंच गए हैं, कई होंगे जो एक साल, दो साल, पांच साल से ज्ञान में होंगे, तो बाबा ने एक बहुत प्यारा सा महावाक्य कहा, इस पे चिंतन और इसका अभ्यास कीजिएगा। बाबा ने कहा यदि कम समय में तुम ज्यादा जमा करना चाहते हो तो क्या करो, परम धाम की स्थिति में बैठ करके सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं दो, विश्व ग्लोब को दुआएं दो। कम समय में ज्यादा से ज्यादा जमा होगा परम धाम की स्थिति में बैठ करके, मास्टर भगवान बनकर, मास्टर रचयिता बनकर, पूर्वज बनकर सारी विश्व की आत्माओं को, सारी वनस्पतियों को सुंदर वाइब्रेशन, जीव जंतुओं को सुंदर वाइब्रेशन। और कहा जाता है दिल से जब दुआ दी उस दुआ का कई गुणा आपको प्राप्त होता है। ना जाने संसार में कौन हमारी दुआओं का इंतजार कर रहा हो, हम ही तो पूर्वज हैं ना, है ना, हम ही पूर्वज हैं, हम ही आधार मूर्त हैं, हमारा ही संसार की आत्माएं इंतजार कर रहे हैं। इसलिए दिल से दुआएं दो, ग्लोब के ऊपर बैठकर, परम धाम की स्थिति में बैठकर, और उसे भी जो आपको बद्दुआ देता है, दे सकते हैं, एक मिनट अपनी आंख बंद करो और उसे सामने लाओ जो आपको बद्दुआ देता है, जो आपके रास्ते में कांटा बोता है, जो आपकी निंदा ही करता रहता है, उसे सामने लाकर दिल से दुआ दो, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो, ये सुखी हो जाए, इसका जीवन भी निखर जाए, ये भी हर प्रकार की संपदा से संपन्न हो जाए, दिल से दुआएं दो। और वैसे ही एक सेकंड के लिए परम धाम की स्थिति में पहुंच जाओ। अब जैसे ऊपर से बाबा की किरणें, मैं पूर्वज जैसे कल्प वृक्ष की जड़ में, उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ में, मास्टर बीज अपनी शक्तिशाली स्थिति से पूरे कल्प वृक्ष को दुआएं दे रहा कि सारा वह कल्प वृक्ष सतो प्रधान हो जाए, सभी सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। सातवां खजाना, पुण्य का खजाना। बाबा पुण्य की पूंजी शब्द यूज करते हैं। संसार में भी कहा जाता है पुण्य की पूंजी जमा करो, क्योंकि तो और कोई पूंजी काम नहीं आएगी, पुण्य की पूंजी ही काम आएगी। तो पुण्य करो और दरिया में डाल दो, अच्छा करो दरिया में डाल दो, और वही जो तुमने पुण्य करके दरिया में डाला है, जब तुम्हारे जीवन में हलचल होगी, तूफान आएंगे, तो वही पुण्य कश्ती बन करके तुम्हें पार ले जाएंगे। इसलिए पुण्य करते रहो, बिना किसी चाहना के, बिना किसी इच्छा के, सबको देते चलो, सबका कल्याण करते चलो, सबके लिए अच्छा अच्छा करते चलो, बिना ये देखे कि कोई मेरा अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। किसी को पवित्र बनने में मदद करो, किसी को भगवान से मिलने में मदद करो, भगवान का ज्ञान दो ताकि उस आत्मा का जीवन भी समर जाए। कोई दुखी है तो उसको दो अच्छे शब्द बोलो, कोई तकलीफ में है, आवश्यकता है उसे, उसके साथ खड़े हो जाओ, पुण्य मिलेगा। क्योंकि आज कोई किसी को साथ नहीं देता, कोई किसी को सहारा नहीं देता, केवल एक भगवान ही सहारा देते हैं। और हम सब भगवान के बच्चे दिल से सबको सहारा देने वाले हैं। और जब समय पर आप किसी को मदद करते हैं ना, वो पुण्य बन जाता है, क्योंकि दुआएं दिल से निकलती हैं, दिल से। ऐसे पुण्य की पूंजी, पुण्य का खजाना हम जमा करते चलें। आठवां खजाना है गुणों का खजाना। बाबा ने गुणों से हमारा श्रृंगार किया है, वो गुणों के सागर हैं, और गुणों के सागर के बच्चे तो मास्टर गुणों के सागर होंगे ही ना, राइट? मधुबन में भी 36 गुण लिखे हुए हैं, लिखे हैं ना, सबने नोट किया है उसे, ना किया हो तो नोट कर लेना, बिना देखे पहले नोट करना कि मुझे कितने गुण याद हैं। समय नहीं है ना, हम इसकी एक्टिविटी करते, कितने गुण मुझे याद आते हैं। सतयुग में हम सर्व गुण संपन्न है ना, तो बनना कहां है? सतयुग में जाकर सर्वगुण संपन्न बनेंगे, यहां ही सर्वगुण संपन्न बनना है। पुरुषार्थ यहां करना है, वहां तो प्रारब्ध है, तो यहां ही देखो मैं कितना गुणों से संपन्न हुआ हूं। एक दूसरे से गुण चुराओ, एक दूसरे से गुण जरूर चुराओ, है ना। बहन जी कह रही एक्टिविटी कराओ, लेकिन ये एक्टिविटी आप चलते फिरते करना, एक्टिविटी ये कि एक दूसरे को देख करके उसके गुण देखो कि इसमें कौन से गुण है और उसे चुरा लो, चुरा लो। कई बार लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं, तो मैं कहता हूं मैंने भगवान से मुस्कान चुराई है। भगवान सामने बैठते थे ना, बाबा सामने बैठते थे, और बाबा की मुस्कान इतनी प्यारी है, इतनी अलौकिक है, देखना कभी वीडियो में ही देखना, तो लगता था बाबा कितना प्यारा मुस्कुराते हैं ना। उनको देख देख के हम सब ने मुस्कुराना सीखा है ना। तो एक दूसरे से भी गुण चुराएं, एक दूसरे से गुण लें, राइट, और साथ ही अपनी सुंदर चेकिंग करें, जो सर्व गुण संपन्न मुझे बनना है वो गुण कितने मेरे अंदर आए हैं, कितना मैं संतुष्ट हूं, कितना मैं सरल बना हूं, कितना मैं सबको स्नेह देता हूं, निस्वार्थ स्नेह, कितना मैं दूसरों को सम्मान देता हूं, कितना औरों के लिए मेरे अंदर सद्भाव भरा हुआ है। एक एक गुण के साथ बहुत अच्छी अच्छी एक एक एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन आप सभी ये करना, अपनी चेकिंग करो, ये मेरा पुरुषार्थ है, कोई और मुझे नहीं बनाएगा, मुझे खुद देखना। इसीलिए बाबा ने कह दिया है बच्चे अपने टीचर स्वयं बनो, कोई और टीचर बन करके तुम्हें नहीं बताएगा, लेकिन अपने टीचर बन करके खुद देखो कि मैं कहां तक गुणों से संपन्न बना हूं। मेरे पिता गुणों के सागर हैं, तो मुझे भी कैसा होना चाहिए? गुणों से संपन्न होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, हर गुण समाया हुआ, जो भी मेरे सामने आए गुण लेकर के जाए, राइट। मैं दूसरों से गुण लूं वो तो है ही, लेकिन मैं ऐसा कहते हैं ना लोग कि आज अच्छे लोग खत्म हो गए संसार में, तो किसी दूसरे ने कहा तुम अच्छे क्यों नहीं बन जाते, तुम अच्छे बन जाओ ताकि कईयों की अच्छे लोगों को देखने की तलाश खत्म हो जाए, हम अच्छे बन जाएं, ऐसे गुणों से संपन्न बन जाएं। और नौवीं निधि है शक्तियों की निधि, शक्तियों का खजाना। बाबा ने कहा बच्चे जैसे ही तुम मेरे बच्चे बने मैंने अपनी सर्व शक्तियां तुम्हें प्रदान कर दी हैं। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है कि बाबा ये शक्ति दे दो, ये शक्ति दे दो, तुम्हें सर्व शक्तियां मैंने दे दी हैं, अधिकार से उन्हें यूज करो। बस इस संकल्प में बैठो जब भी यूज करना है, सर्वशक्तिवान मेरे पिता हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान उनकी संतान हूं, सर्व शक्तियां भगवान ने मुझे वरदान में प्रदान कर दी हैं, और उसके बाद जिस शक्ति की आवश्यकता हो आपको या दूसरों को, आप उस शक्ति का आह्वान करें, जैसे रामायण और महाभारत में दिखाते थे ना, जिस शस्त्र की आवश्यकता होती थी आंख बंद करते थे और ठक से वो प्रकट हो जाता होता था ना, ये अस्त्र आ गया, ये अस्त्र आ गया, वो किसकी निशानी है? हमने यहां अपने आप को स्थित किया, अपने सर्वशक्तिवान पिता के साथ जोड़ा, मैं स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सामना करने की शक्ति प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाएगी, सहन करने की शक्ति प्रकट हो जाओ, प्रकट होके हमारे चारों तरफ ओरा बन जाएगी, अपने आप को मास्टर ऑलमाइटी और अपनी आठ भुजाएं अष्ट शक्तियों के रूप में देखें, ये मैं हूं, ये शक्तियां मेरी हैं, मेरे लिए हैं और संसार के कल्याण के लिए हैं। इसलिए क्या करेंगे, भगवान ने हमें ये सारी शक्तियां, सारे खजाने दे दिए हैं, बस इसे स्वयं के लिए, स्वयं को भी निर्विघ्न रखने के लिए, स्वयं को भी बहुत शक्तिशाली अवस्था में रखने के लिए, आदर्श रूप में रखने के लिए, एक प्रेरणा पुंज बना के रखने के लिए दी हैं और साथ ही सारे विश्व के कल्याण के लिए दी हैं। रखने के लिए नहीं। एक राजा के 3 बच्चे थे, अंत कर रहा हूं इस बात से, उसने कहीं जाने से पहले अपने 3 बच्चों को एक एक बोरी अनाज दिया, धान दिया, कहा ये रखो। अब राजा थे, अब राजकुमारों को लगा ये एक बोरी धान का मतलब क्या है ये देने का, राइट। एक ने उसको स्टोर में रखवा दिया, दूसरे ने कहा ले जाओ इसका चावल निकालो और भंडारे में यूज कर लो, और तीसरे ने क्या किया, खेत में ले गया, उस एक बोरी धान को बो दिया। जब पिताजी वापस आए 6 महीने के बाद, तो देखा कि इतनी खेतें लहलहा रही हैं और उस एक बोरी धान से इतना सारा अनाज हो गया। तो उत्तराधिकारी किसे बनाया होगा राजा ने, तीसरे बेटे को। आप सब भी बाबा के बेटे बैठे हुए हैं, वो राजा, परम राजा, उसे अपना उत्तराधिकारी बनाएगा, उसे स्वर्ग की बादशाही देगा, जो बोएगा, जो देगा, जो इसे विस्तार प्रदान करेगा और विश्व का कल्याण करेगा। तो आप सभी इन नवोनिधि से संपन्न हो जाएं और सारे संसार को देते हुए सारे संसार का कल्याण करें, ऐसी दिल की मंगल कामना, शुभकामनाएं। ओम शांति। चलें, प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया करेंगे। खजाना है ना वो हमारा, राइट, पहली चाबी, वो चाबी मिस ना हो। तो बाबा को दिल से शुक्रिया हमें इस नौ निधि से संपन्न करने के लिए, भरपूर करने के लिए।
दिल कर रहा था सुनते रहें, सुनते रहें। रुपेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी मधुर मुस्कान से हमारी खुशी को भी शिखर पर पहुंचाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।